ओम शांति। आज के तीसरे राजयोग सत्र में योग अभ्यास की प्रैक्टिकल विधि क्या है, कैसे हमें योग लगाना है परमात्मा के साथ, मन और बुद्धि प्रभु स्मृति में एकाग्र कैसे करें, इस विधि पर हम समझेंगे। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है क्योंकि इसका आदि शिक्षक स्वयं परमात्मा है। योग के लिए आत्मा और परमात्मा का सही परिचय चाहिए और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान केवल परमात्मा ही आकर देते हैं। हम कह सकते हैं कि यथार्थ योग तभी संभव है जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आकर ब्रह्मा मुख से हमें सिखाते हैं। इसलिए सर्व योगों का राजा राजयोग इसे कहा जाता है। जिस योग से हम कर्मेंद्रियों का राजा बन सकते हैं, आत्मा इतनी सेंसिबल और पावरफुल बनती है कि हम कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल पा सकते हैं, संयम ला सकते हैं। इसमें कोई हठ दमन की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक सहज और स्वाभाविक विधि से हम संयम जीवन में ला सकते हैं। अब तक भक्ति में मन बुद्धि परमात्मा में लगाने के लिए हम विभिन्न अभ्यास करते रहे हैं, कोई न कोई साधन और क्रिया का आधार लेते रहे हैं, लेकिन राजयोग में बाह्य दृष्टि से न कोई साधन है न कोई क्रिया है। सबसे पहले हमें ये स्पष्ट रहे कि राजयोग क्रिया नहीं है कि वो सीख लें और हम अभ्यास करते रहे। राजयोग जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है, जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। यहां एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहां योगी जीवन बनाना है कि भाई जैसे हम जीते रहे हैं ऐसे ही जीते रहे और उसमें सुबह शाम आधा घंटा योग ऐड कर दे, ऐसी बात नहीं है। राजयोग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। अभी तो हम सिर्फ अभ्यास की विधि क्या है, क्या मेथड है इसकी, वो हम देखेंगे। मूल दो सत्य पूर्व दो सत्र में आप समझ चुके हैं कि योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं और किससे योग लगाना है, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा है। माना न मैं भौतिक हूं, न परमात्मा भौतिक है, न मैं कोई प्राकृतिक सत्ता हूं, न परमात्मा कोई प्राकृतिक शक्ति है। तो आत्मा और परमात्मा के संबंध, संपर्क, मिलन के लिए कोई शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, कोई भौतिक साधन का आधार लेने की जरूरत नहीं है। चित्र में बताया है कि एक श्रोता, एक वक्ता और श्रोता के बीच संपर्क प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर मैं बोलूं ही नहीं और यहां घना अंधेरा हो तो मेरे और आपके बीच कांटेक्ट स्थापित नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं कांटेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम एक दो के साथ संपर्क करते हैं टेलीफोन के माध्यम से, जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से वो कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से संपर्क, कांटेक्ट, संबंध, रिलेशन, उनसे मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से संपर्क मन और बुद्धि से ही हो सकता है, संकल्प शक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न एकाग्र हो सकते हैं। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है। जैसा कि योग के नाम पर हम आसन प्राणायाम की क्रियाएं करते रहे हैं, अक्सर लोग योग माना समझते हैं आसन प्राणायाम करना। राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जब भी हम योग अभ्यास करने बैठते हैं, अपनी सहज स्थिति में बैठते हैं, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठते हैं। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठना है। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है कि माताएं, बहने, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां बिगर आसन, आराम से कुर्सी सोफा पर आप बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में, दो घंटे में आप अपने आप को देखिए कितनी बार पांव ऊपर नीचे करते हैं। अगर सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि भाई ये कब घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही आप बॉडी कॉन्शियस बन जाए, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं। शरीर भी कलयुगी अब ऐसे हो गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को पांव दुखते हैं, कमर दुखती है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए हम कहते हैं कि सुखासन में बैठिए, जिस स्थिति में फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठिए, जिसमें आप सहज आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन योग अभ्यास के समय मन से अटेंटिव होकर बैठना है, एक लक्ष्य से बैठना है कि ये एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा चिंतन के लिए बैठा हूं, इस एम से बैठे। ये मेरा प्रभु मिलन का समय है। अपने आप को हम समझाएं कि जीवन की अन्य अनेक बातें सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, संबंध परिवार की बातें हैं, शरीर की बातें हैं, या अन्य अनेक बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। लक्ष्य बना दीजिए कि प्रतिदिन सुबह एक घंटा और शाम को एक घंटा परमात्मा मिलन के लिए है। आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन के लिए। और थोड़ा गहराई से हम रियलाइज भी करें कि अन्य अनेकानेक बातें सोचने, व्यक्तियों को याद करने में कोई फायदा नहीं है। हमें मन से व्यर्थ भटकना नहीं है। एक परमात्मा की याद ही मुझ आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली है। अभी मुझे उस एक पिता की याद में रहना है, तो फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर के बैठना है। आजकल फिजिकल हेल्थ के लिए लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो भल हम करें, वो शरीर के लिए। लेकिन जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की बात है, उसमें शारीरिक कोई क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। आजकल लोग योग सीखते हैं, फिजिकल योग, हो सकता है कई घंटा दो घंटा पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर स्थिर बैठ सकते हैं, पर आप सोचिए कि शरीर से आसन लगाकर हम स्थिर बैठ गए, पर मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में स्थित नहीं हुआ, शरीर से स्थिर बैठ गए, क्या फायदा है? हमें मन परमात्मा स्मृति में मग्न करना है, एकाग्र करना है। इसलिए परमात्मा हम सभी आत्माओं को यही समझाते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा है और मस्तक के आसन पर आप आत्माएं विराजमान है ही, और कोई शारीरिक आसन की जरूरत नहीं है। अब मन बुद्धि परमात्मा में आसन्न स्थित करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी कहा है, मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मामेव बुद्धि निवेश्य, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने मन बुद्धि चेक करिए, कहां लगाकर बैठे, मन बुद्धि कहां अटैच करके हम बैठे हैं, और परमात्मा मिलन के लिए शरीर से क्रियाएं करते रहते हैं। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, मन बुद्धि परमात्मा में स्थित करना है। लोग सोचते हैं कि इस योग अभ्यास में हमें क्या करना है, क्या हम माला फेरे, मंत्र रटे, मुख से हम गाएं, योग में क्या करना है हमें, क्योंकि अब तक हम इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। समय प्रति समय जो भी महात्मा धर्मात्मा इस संसार में हुए, हरेक ने हमें विभिन्न प्रयास सिखाए कि चलो इस प्रकार करके देखिए मन परमात्मा में एकाग्र होता है। लेकिन अगर हम इन अभ्यासों को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि हम इन साधनों का आधार लेते हुए भी मन से भटकते रहे हैं। हम माला फेरते हैं लेकिन मन भी फिरता रहता है, क्योंकि रटना जपना नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? रमेश भाई, रमेश भाई, रमेश भाई, हम ऐसे माला फेरते हैं? नहीं, हम नेचुरल स्वाभाविक उसे याद करते, उनका चिंतन करते, हम रटते नहीं। ये क्रियाएं रटना जपना नेचुरल नहीं है, औपचारिक है, आर्टिफिशियल। इसलिए अभ्यास हो जाने के बाद फिर क्या होता है, माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा, क्योंकि वो क्रियाएं फिर मैकेनिकल हो जाती, यांत्रिक हो जाए। आप माला फेरते रहेंगे, मन भी फिरता रहेगा, क्योंकि जो क्रियाएं मैकेनिकल हो जाती हैं, फिर मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता, वो भटकना शुरू कर देता है। इसलिए राजयोग में, इवन भक्ति में भी, ज्ञानी भक्तों ने स्पष्ट कहा है, ये कबीर जी ने स्पष्ट कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद सजेस्ट किया है, हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर, हाथ से मण के फेरने की आवश्यकता नहीं है, मन रूपी मण के को फेरना है। जो मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, जो मन संसाराभिमुख हो गया है, हमें मनोस्थिति बदलने की आवश्यकता है, माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, मन की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास स्वचिंतन है, ताकि मन अंतर्मुखी बन सके, सोल कॉन्शियस हो सके, और आप अनुभव करेंगे कि जैसे ही मन अंतर्मुखी बनता है, सोल कॉन्शियस बनता है, हमारा नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात, इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं। हम मंत्र रटते हैं, कई बार हम उसके अर्थ को भी नहीं जानते। यहां मंत्र को रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है। हम भक्ति में रटते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, और दो हाथ से शिव को नमन भी करते हैं, पर फिर आप अपने आप को देखिए, क्या सारा दिन फिर हम उस शिव की आज्ञा पर चलते हैं? मुख से कहा, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूं, दो हाथ से नमन भी करते हैं, पर फिर सारा दिन हम उस शिव परमात्मा की आज्ञा पर नहीं चलते। आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको नमन करता है, पांव लगता है, ये शिष्टाचार वो निभाता है, पर सारा दिन फिर एक भी बात आपकी मानता नहीं। हाँ? तो आप अपने बच्चे को क्या कहे, क्या कहे कि भाई ये बाह्याचार की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं वो तुम करो, मेरी बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। अगर हमें परमात्मा से सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, डिवोशन है, तो हम उनके ज्ञान को माने, उनके गुण और श्रीमत को जीवन में धारण करें। हम मन वचन कर्म से, तन मन धन से परमात्मा के कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार है। हम मुख से रटते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हम गाते हैं पर गाने वाले के जीवन को देखें तो कोई माया की ही शरण में, कोई पैसे की ही शरण में है, कोई व्यसन की ही शरण में है। सिर्फ मुख से कहना क्या मीनिंग रखता है? और अगर मुझे भगवान की शरण में जाना ही है तो बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? अगर मैं भगवान की आज्ञा पर चलती हूं, उनको मन वचन कर्म से फॉलो करती हूं, तो मैं उसकी शरण में ही हूं ना, मैं उनके छत्र छाया में ही हूं। मुझे बार बार रटने की, जपने की आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं, हमें कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है, सिर्फ एक दो को कहना नहीं है। कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक नहीं भरनी, हमें ओम शांति बनना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझे शांति की स्थिति में स्थित होना है। इसलिए सबसे उत्तम ये है कि जो ईश्वर के प्रेम मंत्र में मुग्ध हैं, उसे शब्द मंत्र की कोई जरूरत नहीं। इसलिए राजयोग में न हमें कुछ गाना है न बजाना है। भक्ति में हम जोर जोर से माइक लगाकर रात रात भजन गाते हैं, आवाज करते हैं। सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते, शांति धाम निर्वाण धाम में रहते हैं, जहां आवाज वाणी ही नहीं है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर का आवाज, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। हमें मुख से आवाज करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम साइलेंस में बैठते हैं, अंतर मन से, अंतर्मुखी मन की स्थिति से हम परमात्मा को याद करते हैं, प्यार करते हैं। आरती शब्द वास्तव में आर्त वाणी, अंतर की वाणी से याद करते हैं। इवन हमारे मानवीय संबंधों में भी सिर्फ मुख से कहा हुआ टच नहीं होता है, दिल से कहा हुआ दिल को टच करता है। हम कहते भी है कि भाई ऊपर ऊपर से कह रहे हो या सच्ची दिल से बुला रहे है ना। परमात्मा को दिल के प्यार से अंतर मन से याद करना है। इसलिए यहां आप देखते हैं कि हम साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करते हैं। प्रारंभिक अभ्यास में ईश्वरीय गीत संगीत बजाते हैं और गीत भी आप सुनते हैं ईश्वरीय ज्ञान के बने हुए, परमात्मा प्यार के बने हुए हैं। ये गीत मन में भाव जगाते हैं और ये संगीत उस भाव को गति देते हैं। हमारा मन जो परमात्मा के रिलेशन में ड्राई हो गया है, ये गीत संगीत प्रारंभ में भाव जगाने में मदद करते हैं। पर जब आपका अपना निश्चय हो जाता है, जब हमारे को परमात्मा से जिगरी प्यार हो जाता है, फिर इस गीत संगीत की भी जरूरत नहीं रहती। फिर हमारा मन ही परमात्मा प्यार के गीत गाता है, हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं रहती। अब लोग ये सोचते हैं कि योग कहां लगाना है, हम योग कहां लगाएं, सामने क्या रखें, मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, दीवा जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं, हमें योग कहां लगाना है। क्योंकि भक्ति में हम इस प्रकार के कोई ना कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार लेते रहे हैं, तो राजयोग में क्या करना है। पर अब मैं आपसे ही कहूंगी कि अब आप खुद सोची कर बताइए कि हमें योग में क्या करना है। अब आप सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है, अब आप भी ज्ञानी तो आत्मा है। आप अपने आप को जान चुके हैं, पिता परमात्मा के सही परिचय को प्राप्त कर चुके हैं। अब आप खुद विवेक से बताइए कि हमें योग कहां लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र फोटो या मूर्ति से योग लगाना। ये तो भक्ति में हम भगवान को नहीं जानते थे, सिर्फ मानते थे, श्रद्धा भावना थी, पर यथार्थ रूप से हम जानते नहीं थे, तो हमने मूर्ति चित्र फोटो का आधार लिया। जैसे आपके पिताजी विदेश गए हों, तो उनके फोटोज आएंगे, वीडियोज आएंगे, वो देख करके आप खुश होंगे। उनके पत्र आएंगे, मेल्स आएंगे, वो पढ़कर खुश होंगे, पर पिता स्वयं सन्मुख आ जाए, फिर फोटो देखते रहेंगे कि आए हुए पिता से सन्मुख मिलन मनाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या करेंगे। तो चलो, भक्ति में हम भगवान को नहीं जानते थे तो हमने अपनी भावना अनुसार, मान्यता अनुसार, हमने मूर्ति चित्र फोटो का आधार लिया। पर अब जबकि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सही ज्ञान दे रहे हैं, अब हमने अपने आप को जान लिया है, पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त कर लिया है, अब हमें डायरेक्ट उस परम चैतन्य परमात्मा से योग लगाना है। और परमात्मा तो आप मेरे जैसे फिजिकल तो है ही नहीं, वो कोई शारीरिक आकार वाले तो है नहीं, इन आंखों से देखने की तो बात ही नहीं है ना, वो कोई देखने की चीज नहीं है, जानना है, समझना है, पहचानना है। इसलिए हम मन की आंख से परमात्मा को देखते हैं और बुद्धि से, समझ से हम उस पिता को याद करते हैं। अभी इस हॉल में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, हाँ, विजुअलाइज किया ना मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से सूर्य को देखा कि आकाश में वो प्रकाशमान गोला है जो हमें नित्य रोशनी और ऊर्जा देता है। इवन भौतिक चीजें या व्यक्ति के फिजिकल परिचय को प्राप्त करने के बाद भी मन की आंख से ही तो विजुअलाइज करते हैं। परमात्मा तो भौतिक है ही नहीं ना, शारीरिक आकार वाले है ही नहीं, वो तो है ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। भक्ति में भी हम कहते हैं कि हम इनको चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं, इसलिए मन की आंख से देखना है। सती सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप पिता परमात्मा को और मन बुद्धि से याद करना है। इसलिए राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो नहीं है। यहां जो भी चित्र लगे हुए हैं, इवन आपने हमारे सेवा केंद्रों की मुलाकात ली होगी, वहां चाहे यहां म्यूजियम में जो भी चित्र लगे हैं वो ज्ञान समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना, ये ज्ञान समझाने के लिए। ये तो आप मानते हैं ना कि घर में जैसे चित्र लगे हुए होते हैं ऐसा ही चरित्र बनता है। ये ज्ञान के चित्र है। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का रेड सिंबल है आपके कमरों में भी लगा होगा, यहां ये जो रेड प्रतीक है वो समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाना है। और अनुभव है आप सभी को भी कि सामने मूर्ति है, मंदिर में खड़े हैं, मन में दूसरी ही मूरतें घूम रही, मन से भटकते रहते हैं। इसलिए आखिर ये आधार हम कब तक लेंगे? अब एक कदम हमें आगे बढ़ना है। बच्चा छोटा है तो अंगुली पकड़कर चलता है, साधन लेकर चलता है, पर हर माँ बाप का प्रयास क्या होगा कि बच्चा अपने पैरों के बल चले। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि बच्चा जीवन भर अंगुली पकड़ के चले, साधन लेकर चले। हरेक का प्रयास होता है कि अपने पैरों के बल चले। तो चलो, भक्ति में हम भगवान को नहीं जानते थे, मानते थे सिर्फ, जानते नहीं थे, तो हमने चित्र मूर्ति फोटो मंदिर का आधार लिया। पर अब जबकि हमारे पास सही ज्ञान है तो हम उस ज्ञान बल से परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए भक्त आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा और ज्ञानी आत्मा से अब योगी आत्मा बनना है, अब एक कदम आगे बढ़ना है। इस बात को न समझने के कारण लोग ये सोच समझते हैं कि ये भक्ति छुड़ाते हैं। भक्ति छोड़ने की बात नहीं है, और ही आगे बढ़ने की बात है। आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स्थ में जाएंगे तो आप दुखी नहीं होते हैं कि अरे फिफ्थ छोड़ दे रहे हैं। नहीं, एक कदम आगे बढ़ना है। जो साधनों के आधार से अभ्यास करते थे वो मन बुद्धि से करना है, जो सिर्फ भावना से करते थे वो समझ और प्यार से करना है। तो ये तो एक कदम आगे बढ़ना है ना। तो हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन बुद्धि से असली घर परम धाम में जाते हैं, और मन की आंख से ज्ञान नेत्र से उस परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देखते हैं और याद करते हैं। इसलिए राजयोग की सिंपल व्याख्या अगर देनी है तो वो ये है कि परमात्मा जो है जैसे हैं जहां रहते हैं वहां मन बुद्धि लगाना उसे योग कहते हैं। वो जो है सारी महिमा आप जानते कि वो हमारे परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, वो ज्ञान के सागर है, प्यार के सागर है, दुख हरता सुख करता है, सर्वशक्तिमान पतित पावन है, वो जो है और जैसा है, कैसा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसी मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट हूं, और जहां रहता है परम धाम में वहां मन बुद्धि लगाना उसे योग कहते हैं। अपनी अपनी मत अनुसार भावना से भगवान को याद करना वो भक्ति है, वो भक्ति है, भावना है, सत्यता नहीं है। वहां हम अपनी अपनी मत अनुसार अपनी अपनी भावना से भगवान को याद करते, वो भक्ति है। पर वो जो है जैसा है जहां रहता है यथार्थता से जान पहचान कर याद करना उसको योग कहते हैं। इस योग अभ्यास में इसलिए ना कोई साधन के आधार की जरूरत है, ना कोई क्रिया की आवश्यकता है। हम अपने प्रेमियों को स्नेहियों को याद करते हैं, क्या उनका फोटो हो तो याद आवे ऐसे हैं? हाँ नहीं, हम कहते हैं कि जिसको मैंने जान लिया, पहचान लिया, अंतर मन में छाप लिया, उसके बाह्य फोटो की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं। परमात्मा तो शारीरिक है ही नहीं ना। अगर मन बुद्धि में उनका परिचय स्पष्ट है तो हमें बाह्य कोई चित्र फोटो की आवश्यकता नहीं रहती। अब जब योगी जीवन बनाने के लक्ष्य की बात हम करते हैं, ईश्वरीय संदेश जब हम देते हैं सबको कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर भाई बहने ये सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम योगी कैसे बन सकते, क्योंकि अब तक जो योगी तपस्वी हुए वे घरवार छोड़कर हुए, इसलिए गृहस्थी भाई बहने सोचते हैं कि हम तो योगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम तो छोड़ नहीं सकते हैं दुनिया, हम अनेक संबंधों में बंधे हैं, अनेक जिम्मेवारियां हैं, हम दुनिया को नहीं छोड़ सकते। लेकिन राजयोग हमें ये नहीं कहता है कि दुनिया छोड़नी है, राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें देहभान को छोड़ना, दुनिया छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो छोड़कर जंगलों में गए थे वे भी अब शहरों में आकर आश्रम बनाकर बैठे, तो दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देह भान छोड़ने की आवश्यकता, सोल कॉन्शियस बनने की आवश्यकता है। देह भी मान मन की चंचलता का मूल कारण है। बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है। इसलिए न स्थान बदलना है, न कोई बाह्य ड्रेस बदलने की बात है। कई सोचते हैं हम यहां ही रह जाएं, यहां रहने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत, स्थान नहीं आत्मा स्थिति बदलनी। तो अपार भीड़ के बीच भी एकांत अनुभव होता है, अनेक के होते भी मन में एक ही होता है। हमें मनोस्थिति बदलना है, कोई स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं। कोई भगवा पहन लेने से या सफेद पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। ये हमारी यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी यूनिफॉर्म होती है ना, ये हमारी यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम पहनते, पर सफेद पहनने से योगी नहीं हो जाता है। योगी को सफेद पसंद आता है, क्योंकि वो स्वच्छता, पवित्रता, शांति का सूचक है। तो ड्रेस बदलने की बात नहीं है, हमें आंतरिक दिल, हमें अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को बदलना है। तो हम घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा प्यारा पवित्र योगी जीवन बना सकते। राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का योग। संसार अनादि काल से प्रवृत्ति मार्ग का बना हुआ। घर बार कितने लोग छोड़ेंगे, जंगल भी तो इस दुनिया में ही आए हुए है ना। इसलिए राजयोग का लक्ष्य सिर्फ पूजा पाठ क्रियाकांड करना नहीं है। हम पूजा पाठ क्रियाकांड करके खुश हो जाते हैं कि हम धार्मिक है, हमारी भावना संतुष्ट हो जाती है कि हम धार्मिक है, पर प्रैक्टिकल जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए राजयोग में कोई क्रियाकांड नहीं। राजयोग का तो लक्ष्य ही है पुजारी से पूज्य बनना। हमें अपने जीव, हमें सिर्फ गायन, वंदन, नमन, दर्शन, पूजन करके खुश नहीं होना। हमें अपने जीवन को पूज्य, श्रेष्ठ, वंदन योग्य, गायन योग्य बनाना। इसलिए परमात्मा कहते हैं पुजारी से पूज्य, विकारी से निर्विकारी, भिखारी से अधिकारी बनना है। इसलिए राजयोग में हमें भगवान को पुकारना नहीं, कोई पुकारते हैं माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं अल्लाहु अकबर, हे भगवान, ओ गॉड, पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं। बताया ना, मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता है, इसलिए चिल्लाना नहीं है, आवाज नहीं करना है। हमें भगवान से मांगना नहीं है, हम कहते हैं हम भक्ति में भगवान को याद करते हैं, परंतु वास्तव में क्या करते हैं, मांगते ही रहते हैं। हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम भगवान से मांगते रहते हैं, मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है? वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, वारिस है, हमारा अधिकार है, बर्थ राइट है भगवान से प्राप्त करना। हमें मांगने की जरूरत नहीं, हमें लायक बनने की जरूरत है। लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते। क्या अनुभव है आप सबका? लायक बच्चे को माँ बाप खुद पेट से निकाल कर देते। हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता। भगवान को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, पर अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हम हैं? है? नहीं है। इसलिए खुद के लिए क्या गाते हैं, मैं मुरक्खल कामी। भगवान के बच्चे कहलाने योग्य भी हम नहीं रहे। इसलिए योगी बनना माना योग्य बनना है, और कुछ नहीं करना है। भगवान के बच्चे कहलाने योग्य बनना। इसलिए राजयोग में हमें भगवान से विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करने की भी बात नहीं। भक्ति में हम बड़े दीन हीन लाचार भाव से कहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम रिक्वेस्ट करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रार्थना करने की, विनती करने की जरूरत नहीं। रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना तो वहां करनी पड़ती है जहां कोई ना देता हो। आप कोई चीज ना देते हो तो मैं कहूंगी प्लीज आप दीजिए, है ना? जो है ही दाता, जो दे ही रहा है, उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो और ही इंसल्ट करना है कि वो दे ही रहा है, फिर रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? है? परमात्मा दाता है, क्योंकि वो सागर है, अखुट भंडार है, वो निरंतर दे रहा है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। वो दे रहा है, हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है, हमारा उनसे योग नहीं है। योग का अर्थ है कनेक्शन। आपके शहर में पावर हाउस है पर आप कनेक्शन नहीं करते हैं तो आपको अपने घर में बिजली मिलेगी? नहीं। जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता है हम पहले कनेक्शन चेक करते, कहीं फ्यूज तो नहीं ऑफ। हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं रहा। परमात्मा लाइट हाउस है, पावर हाउस है, स्पिरिचुअल जनरेटर है, पर मन और बुद्धि की तार परमात्मा से नहीं जुड़ी हुई है। चेक करिए अपने आप को, मन और बुद्धि की तार कहाँ अटैच है? मन बुद्धि कहाँ हम जोड़ कर बैठे हैं? जहां से कोई प्राप्ति नहीं है और फिर परमात्मा से मांगते रहते, जहां से प्राप्ति है वहां मन बुद्धि की तार अटैच करनी है ना। हम इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट करते हैं तो भी क्या करते हैं, छिल कर पहले ऊपर जो रबर का लेयर है वो हटाकर अंदर की सूक्ष्म तारों को जोड़ते हैं ना। तो ये लेयर भूलना है, शरीर देह भान से न्यारा होकर, शरीर के भान से न्यारा खुद को आत्मा समझकर मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन में रहना, उसे योग कहते हैं। तो हमें उनकी स्मृति से ही अनुभूति हो जाती, परमात्मा की स्मृति से ही समर्थी आती है, मांगने की कहने की जरूरत ही नहीं रहती। दूसरा कारण प्राप्ति क्यों नहीं है, जीवन में प्राप्ति संबंध से होती। आपके पास लाखों रुपए हैं पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है तो मुझे कुछ मिलेगा? मिलेगा नहीं। प्राप्ति रिलेशन से होती है। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बन गए, किया क्या? रिलेशन से अधिकारी बन गए। प्राप्ति संबंध से होती है। हमारा भगवान से प्रैक्टिकल कोई संबंध नहीं रहा है। एक बच्चा शारीरिक पिता को स्वाभाविक याद करता है, उससे कोई माला मंत्र मूर्ति चित्र लेना नहीं पड़ता है। बच्चा माँ बाप को जानता है, पहचानता है, संबंध है, प्यार पालना ली है, ऑटोमेटिक माँ बाप की याद आती है। हमारा भगवान से कोई प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं रहा। हम भक्ति में वर्णन करते हैं संबंधों का। कौन सा श्लोक बोलते हैं? त्वमेव माताश्च पितात्वमे, त्वमेव बंधुश्च सखात्वमे। वहां तो एक दो रिलेशन, भगवान के साथ सर्व संबंधों का हम गायन करते। राजयोग में हम ये कहते हैं कि हमें मुख से संबंधों का वर्णन करने की, गाने की जरूरत नहीं। हमें मन वचन कर्म से परमात्मा के साथ संबंध को फॉलो करने की जरूरत। क्या आपके बच्चे रोज घर में बैठकर माँ बाप के सामने बैठकर गाते हैं, क्या तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो? हाँ, ऐसे गाते हैं क्या? हाँ, बच्चे को निश्चय है कि यही मेरे माँ बाप है, निश्चय है, पहचान है। इसलिए प्रथम दो लेसन में वो पहचान दी गई कि आप कौन है और वो कौन है। याद का प्रथम आधार परिचय है। आप अपने मन को चेक करिए, हमें कौन याद आते? दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, हमें सबकी याद आती है? नहीं। हमें किसकी याद आती है? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। योग का प्रथम आधार ज्ञान परिचय है। इसलिए प्रथम दो सत्र में ये ज्ञान दिया गया कि आप कौन हैं, पिता परमात्मा कौन है। परिचय के बाद अगर संबंध संपर्क नहीं रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है? हम भूल जाते हैं। हमें नेचुरल कौन याद आते हैं? चेक करो मन को, हमें स्वाभाविक किसकी याद आती है? जिससे हमारे रिलेशन है, कनेक्शन है, जिनके साथ रोज हम उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, वो ही तो याद रहते हैं, उसकी ही तो याद आती है। तो परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी मेथड क्या हुई? भगवान से संबंध जोड़ो। सिर्फ मानो नहीं, यथार्थ रूप से जानो। अब सिर्फ जानकर तीन दिन तक सीमित नहीं रहो, जानकर संबंध जोड़ो, ऑटोमेटिक याद आएगी। जब जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान के साथ सर्व संबंध का गायन करते हैं ना हम,
माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व हम कहते हैं। जब हम जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं कि वो ही मेरा माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सब कुछ है, तो मुझे हर बात में, हर क्षण, हर स्थान, हर परिस्थिति में मुझे ऑटोमेटिक किसकी याद आएगी? परमात्मा की ही आएगी ना, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ है। तो योग का मेथड है भगवान से संबंध जोड़ना, बस, और कोई विधि नहीं। योग की विधि है भगवान से संबंध जोड़ो, और ये हमारा अनुभव है। देखिए चित्र में, जीवन में हमें अनुभव है, संबंध जोड़ते हैं तो स्मृति भी वो आती है, प्यार भी उनसे होता है। बच्चा छोटा है, माँ से संबंध है, माँ की ही याद उससे आती, क्योंकि अभी माँ ही उनके लिए सब कुछ है। उस छोटे बच्चे को दूसरे बुलाएंगे तो भी वो बच्चा माँ को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि माँ ही उनके लिए अब सब कुछ। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बाल मित्रों से संबंध होता है, अब उसकी उसका प्यार मित्रों के तरफ चला जाता है, अब उससे मित्रों की याद अधिक आती है। इसलिए मित्रों के साथ खेलते हुए बच्चे को माँ आवाज देती है कि चलो घर चलो, शाम हो गई, तो भी वो बच्चा आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि अब उसका योग मित्रों की तरफ है। वही बच्चा बड़ा होता है, युवा होता है, शादी करता है, अब मित्रों की याद कम हो जाती है, पत्नी की याद अधिक आती है। पत्नी से बच्चा होता है, अब बच्चे के तरफ दोनों का योग है। एक पेशेंट को डॉक्टर की याद आती है, एक स्टूडेंट को टीचर की याद आती है। जीवन में ये नेचुरल है कि संबंध बदलते हैं, स्मृति भी बदलती है, स्नेह भी बदलता है। तो हमें योग में नया कुछ नहीं करना है। अब तक खुद को देह समझकर, देह के मित्र संबंधों को याद करते थे, अब खुद को आत्मा समझकर आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा को याद करना है। कोई और कुछ योग माना कोई बड़ी चीज नहीं है। और तीसरी बात, जीवन में संबंध भी अनेक होते हैं, पर इन अनेकानेक मित्र संबंधियों में हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? मित्र संबंधी अनेक है, पर इन अनेकानेक मित्र संबंधियों में हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती? जिसके प्रति दिल का सच्चा प्यार है वो बहुत याद आते हैं। हम कहते हैं कि मुझे उससे याद करना नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उनकी याद आती नहीं है, मुझे तो उनकी याद क्या कहते हैं सताती है। मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। परमात्मा की याद हमें निरंतर आती रहे, उसका आधार है भगवान से सच्चा प्यार। इसलिए अगर हम कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, मन भटकता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको भगवान से सच्चा प्यार नहीं है, नहीं है। ठीक है, भगवान को मानते हैं, नियम से याद करते रहते हैं कि भी हमारा नियम है, हम सुबह शाम आधा घंटा रोज भगवान को याद करते हैं, हमारा नियम है, कई नियम से करते हैं। हमारे बाप दादा करते थे इसलिए हम भी करते हैं। कहते ना, मेरी सास करती थी इसलिए हम भी करते। तो ये नियम निभाने वाले लोग हैं, कोई नियम से याद करते, भावना प्यार नहीं है। कोई स्वार्थ से भगवान को याद करते हैं, मतलब कुछ चाहिए भगवान से इसलिए याद करते हैं, मतलब से याद करते हैं। कोई भय से भगवान को याद करते, मुझे कुछ हो न जाए, मेरा काम निर्विघ्न पूरा हो जाए, भय से भगवान को याद करते, प्यार से याद करना है। इसलिए राजयोग का आधार प्यार है, सिंपल। जितना प्यार उतनी एकाग्रता। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप 3 दिन में योगी बन जाएंगे, हम ये जरूर कह सकते हैं कि योग का सही ज्ञान आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। योगी बनने के लिए हमें रोज अभ्यास करने की आवश्यकता। इसलिए जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, और जितना परमात्मा से मेरा जिगरी प्यार होता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। और लास्ट बात, राजयोग इतना सहज और नेचुरल है कि इसमें हमें आंख बंद करके बैठने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति में भगवान को याद करते समय हम आंख बंद करके बैठते, इवन स्कूलों में प्रार्थना कराते हैं, विद्यार्थियों को जबरदस्ती आंख बंद कराते, क्योंकि हमारा कंसेप्ट रॉन्ग है, हमारी बिलीफ रॉन्ग है। हम ये मानते हैं कि आंख खुली होगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते हैं। अभी भी देखो आसपास किसी की आंख बंद तो नहीं है। हाँ देखो देखो अच्छी तरह देखो। हाँ पर आप अपने अभ्यास और अनुभव से बताइए कि आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? भटकता है ना। देखिए आंखें खुली है तो इस चार दीवार के बीच में जो कुछ है वो दिखाई देता है, आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती है, जिंदे मरे सब दिखाई देते। इससे क्या सिद्ध होता है कि आंख नहीं देखती है, मैं आत्मा देखती हूं, मेरे मन बुद्धि देखते। आंख तो बाह्य देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है, मुख बोलने का साधन है, ये तो हमारे फिजिकल सेंस ऑर्गन्स है। लेकिन देखने वाली सुनने वाली बोलने वाली कौन है? मैं आत्मा। मैंने बाह्य आंखें बंद कर दी पर मन की आंखें घूम रही है तो एकाग्रता कहां से होगी? आंखें खुली है पर मन की आंख फोकस है परमात्मा के प्रति, तो आंख खुली होते हुए अनेकों बैठे हुए होते हुए मुझे किसी की भी याद नहीं आएगी, क्योंकि याद करने वाले मन बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस है। और ये अनुभव हरेक को है, जब आप किसी के याद चिंतन में खो जाते हैं तो कोई क्या कहता है वो भी नहीं सुनाई देता है, कोई यहां से गया आया वो भी पता नहीं चलता है। हम अपने में खोए हुए होते हैं, कोई पूछेगा प्लीज यहां से फलाना गया, आप कहते सॉरी मुझे पता नहीं है, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात कहते हैं हम कहते सॉरी मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, फिर से बताइए। तो हमें वो ही सुनाई देता है, वो ही दिखाई देता है जहां मन फोकस है। इसलिए अगर मेरे मन बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस है, एकाग्र है, तो मेरी आंखें खुली हैं, कोई आ रहा है जा रहा है कुछ भी हो रहा है मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मैं सहज योगी बन सकती। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए, ना बंद करने का प्रयास करिए, ना आंखें फाड़ के बैठिए। आंखें फाड़ के योग में नहीं बैठना है, आंखें नेचुरल खुली रहे, आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, मन पर अटेंशन रखना है। आखिर हम गृहस्थी हैं, कर्म में हैं, हम आंख कितना समय बंद कर सकेंगे? एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा, आखिर हमें कर्म भी तो करने हैं। तो क्यों नहीं हम ये प्रैक्टिस ही ऐसी करें कि आंखें खुली हो, मन बुद्धि परमात्मा की स्मृति में रहे। और ये मेथड लॉजिकल है। लॉजिकली आप सोचिए, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती हैं या बंद रहती है? आंखें नेचुरल खुली रहती है या बंद रहती? खुली रहती है ना। आंखें बंद कब होती हैं? हैं? जब नींद आती है, इंसान थका हुआ है तो आंखें बंद होने लगती है ना, वरना तो आंखें खुली रहती है ना। हम कहते भी है कि मेरी नींद पूरी हो गई, आंख खुल गई। आंखें नेचुरल खुली रहती है, बंद करना अननेचुरल है। इसलिए योग अभ्यास के समय आंखें नेचुरल खुली रखिए। सामने जो योग अभ्यास कराने बैठते हैं, जैसे आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, आपको मेरे मस्तक में देखना है कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा। जैसे फिजिकल ड्रिल में फिजिकल ड्रिल मास्टर स्टेज पर एक्सरसाइज करता है और उसको देखकर ऑडियंस फॉलो करता है ना, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, मन बुद्धि की एक्सरसाइज है। मैं परमात्मा की याद में स्थित होंगी और मुझे देखकर आप भी परमात्मा की याद में स्थित रहना है। अब हमेशा कोई योग अभ्यास कराने नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए आपने हमारे केंद्रों में देखा होगा, हमारे मेडिटेशन रूम में देखा होगा, ब्रह्मा बाबा का ट्रांसलेट जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि हमेशा कोई योग अभ्यास कराने नहीं बैठ सकते। तो जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी योग शिव परमात्मा से लगाना है। आज मैं योग अभ्यास कराऊंगी तो आप शिव बाबा को याद करेंगे ना, मेरे से योग नहीं लगाते। ऐसे ब्रह्मा से हम योग नहीं लगाते हैं, वो ब्रह्मा जैसे शिव पिता को याद करते हैं, हमें भी शिव परमात्मा को याद। तो ये है राजयोग की प्रैक्टिकल अभ्यास करने की विधि। बाह्य कोई साधन नहीं, कोई क्रिया नहीं, सहज और नेचुरल मेथड है। हर कोई योगी बन सकता है। तो आज का अभ्यास मैं चाहूंगी कि हरेक विधि पूर्वक पद्धति पूर्वक करेंगे, तो हरेक व्यवस्थित बैठ जाएंगे। अपना डायरी पर्स फाइल साइड में रख दीजिए। आंखें नेचुरल खुली रहे। आज मैं योग अभ्यास करा रही हूं, आप मुजात्मा को देखते हुए, मस्तक में देखते हुए पिता परमात्मा को याद करेंगे। अभ्यास की इस प्रारंभिक अवस्था है, मैं सजेशंस देती जाऊंगी। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन कैसे शिव बाबा को याद करना है, चिंतन करना है, स्मृति में रहना है, मैं थॉट्स देती जाऊंगी। आप ऐसे ही मन में वो ही थॉट रिवाइज करें, मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज करें, उसके अर्थ को रियलाइज करें और उस अनुभव में स्थित होते जाएं। जब हमारा अपना प्यार संबंध परमात्मा से हो जाता है, फिर हमें ये कमेंट्री की भी जरूरत नहीं रहती है। हमारा अपना मन उस पिता से बात करने लगता है। शरीर से हम यहां बैठेंगे, मन बुद्धि से असली घर परमधाम में जाएंगे, मन की आंख से उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखेंगे और बुद्धि से, समझ से, प्यार से हम पिता को याद करेंगे। आसपास की व्यक्तियों से और परिस्थितियों से न्यारे हो जाइए, साक्षी दृष्टा बन जाइए। एक डिटैच ऑब्जर्वर बन जाइए। मन को विस्तार से सार में ले आइए। मस्तक के बीच स्वयं के निराकार आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मस्तक के ऊंचे तख्त पर विराजमान मैं चमकती हुई चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मुझ आत्मा का असली घर परमधाम है। जो इस फिजिकल वर्ल्ड पांच तत्वों से पार है। सूर्य चांद सितारों से भी दूर, छठवां प्रकाश तत्व ब्रह्म तत्व जहां छाया हुआ है, मैं इस ब्रह्मलोक की निवासी हूं। पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मैं ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रही हूं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूं। दर दर भटकती रही हूं। मैं तन से भटकती रही, मन से भी खोजती रही। आप कितने कल्याणकारी हैं, जो स्वयं सृष्टि पर आते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, हमें भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। मेरे प्यारे शिव पिता, आपके सद्ज्ञान को प्राप्त कर मेरे मन का अंधकार समाप्त हुआ है। अब मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और आप कौन है। मुझे अपार हर्ष है। जीवन का सही ठिकाना मुझे प्राप्त हो गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है मुझे आप जैसा बनना है। आप सत्यम शिवम सुंदरम है। आपकी संतान
मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मेरी मीठे शिव बाबा, आप सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता है, मैं आपको याद करती हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। प्यारे शिव बाबा, मैं आपसे योग लगाती हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मैं आपको याद करती हूँ। इससे मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ। अब मैं अकेली नहीं हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब मेरा कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर कंट्रोल है। मैं शांत और शीतल हूँ, शुद्ध और पवित्र हूँ। मैं शुद्ध पवित्र हूँ, अचल अडोल हूँ। आपका हाथ और साथ, आपकी याद की छत्र छाया मुझे निर्भय निश्चिंत बनाती है। मैं स्वयं एक शक्ति हूँ, दिव्य ज्योति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, ओम।